بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر جو پتھر یا پتھریلی زمین پر اپنی تاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں پھر جو صبح سویرے دشمن پر چھاپا مارتے ہیں دشمن پر حملہ کرتے ہیں دشمن پر یلغار کرتے ہیں تو اس وقت غبار اڑاتے ہیں پھر وہ اس وقت دشمنوں کے جمگٹے کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور بے شک وہ انسان اپنی ناشکری کے اوپر خود گواہ بھی ہے. یقیناً اس انسان کو اپنی اس ناشکری کی خبر ہے ہی. یقیناً اس رب کو انسان کی ناشکری کی پوری خبر ہے. یہ تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اور یقیناً وہ انسان مال کی محبت اور چاہت میں بہت پکا ہے. کیا بھلا اس انسان کو وقت معلوم نہیں جب وہ مردے جو قبروں میں ہیں ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. یقیناً ان کے رب اس دن ان کی اس حالت سے پوری خبر رکھتے ہوں گے. اس سورت کا نام سورۃ والعادیات ہے. یہ ہجرت سے پہلے اتاری گئی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کے اندر 11 آیتیں ہیں. سورۃ والعصر کے بعد سورہ کوثر سے پہلے 14 نمبر پر نازل ہوئی ہے. سورت کی پہلی ہی آیت میں عادیات کی قسم کھائی گئی ہے اور زیادہ تر مفسرین نے عادیات سے گھوڑوں کو مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے اس سے اونٹنیوں کو مراد لیا ہے جو اللہ کی راہ میں چلے اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوئے. ایسے گھوڑے ایسی اونٹنیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی الگ الگ اداؤں کی ان کی الگ الگ حالتوں کی قرآن کی اس سورت کے اندر قسم کھائی ہے جو یہ اور خاص طور پر آگے چل کر کے ایک اہم مضمون اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے. بہت دھیان سے سمجھنے کی یہ سورت ہے. سب سے پہلی بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. کیا بات گھوڑوں کی قسم کھانے کی؟ تو سمجھو کہ عرب لوگ گھوڑے بہت پالتے تھے. اونٹنیاں بھی پالتے تھے اونٹ بھی پالتے تھے. پرانے زمانے کے اندر ٹرانسپورٹ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سب سے زیادہ فاسٹ اگر کوئی گاڑی تھی تو وہ گھوڑے تھے. اس کے علاوہ اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے گدھے بھی استعمال ہوتے تھے کھچر بھی استعمال ہوتے تھے और बाज लोग हाथी भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन सबसे फास्ट अगर सफर की कोई चीज थी तो वो घोड़े थे। और ये घोड़े जो है अजीब अल्लाह ताला की नेमत है। आज दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई, इतनी आगे बढ़ गई, फिर भी आज के जमाने के अंदर घोड़ों की इतनी ही कीमत है, इतनी ही वैल्यू है। आज भी दुनिया की तकरीबन हर मुल्क और कंट्री और देश की आर्मी में, लश्कर में घोड़े इस्तेमाल होते हैं, और पुलिस वाले भी घोड़े इस्तेमाल करते हैं। जिन गलियों में, कूचियों में, पहाड़ों पर, जंगली इलाकों में कोई तरह की गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर घोड़े पर बैठकर पुलिस, सिपाही, आर्मी वाले जाते हैं। ये घोड़े के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी खूबी रखी हुई है। घोड़ा पालना अच्छी नीयत से सवाब है, उसको चारा दाना खिलाना ये सवाब है, बड़ी फजीलत है घोड़ा पालने के अंदर। लेकिन अब लोगों ने घोड़े से न करने के काम लेने शुरू कर दिए, जैसे कि घोड़े के ऊपर बैठ के दूल्हे की बारात निकालते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ करके जुलूस निकालते हैं। तो ये सब चीजों के लिए थोड़ा ही है घोड़ा। घोड़ा तो जो है उस पर बैठ करके आदमी सफर करे है। तो घोड़ा बड़ा वफादार जानवर है, अजीब वफादारी अल्लाह ने घोड़े में रखी है। घोड़ा उसका जो मालिक होता है वो उसको घास देता है, चारा देता है, दाना देता है, पानी पिलाता है। हालांकि ये घास, चारा, दाना इंसान ने खुद नहीं पैदा किया, वो पैदा भी किया अल्लाह ताला ने। घोड़े का जो मालिक होता है वो तो अल्लाह का पैदा किया हुआ घास दाना लाकर घोड़े को खिलाता है। घोड़े का मालिक अल्लाह का पैदा किया हुआ पानी लाकर के घोड़े को पिलाता है। गोया कि ये तो सिर्फ वास्ता बनता है, बीच के अंदर जो है वाया बनता है। अब ये घोड़े को जिस मालिक ने दाना खिलाया, चारा खिलाया, घास खिलाया, पानी पिलाया, तो ये घोड़ा कितना वफादार हो जाता है कि उस मालिक के लिए घोड़ा जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जब इसका मालिक घोड़े के ऊपर बैठकर लड़ाई में जाता है, जंग में जाता है, वॉर में जाता है, तो घोड़ा अपनी जान को जोखिम में डाल करके घुस जाता है। हालांकि घोड़े की और सामने जो दुश्मन है उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, असल तो इंसानों में दुश्मनी है, लेकिन ये घोड़ा अपने ऊपर बैठने वाले मालिक का इतना वफादार कि अपने मालिक के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सामने वाले के लश्कर के अंदर घुस जाता है। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ा सबक है कि इंसान तू एक घोड़े को देख करके समझ, एक घोड़े को देख करके सीख कि जिस घोड़े को उसका मालिक घास, चारा, दाना, पानी देता है, हालांकि वो तो सिर्फ एक जरिया बनता है, असल तो अल्लाह देते हैं, फिर भी अपने घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार कि वो अपने मालिक के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जो इस इंसान को किस्म किस्म की नेमत देते हैं, हर तरह का खाना पीना देते हैं, लेकिन ये इंसान अपने मालिक के लिए, अल्लाह के लिए नाफरमान है, अपने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता, अपने अल्लाह की बात नहीं मानता। तो ये सबसे पहला लेसन है कि इंसान तू घोड़े को देख करके सीख, तू भी अल्लाह ताला का वफादार बन जा। कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी की तारीफ की, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ्फा, इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह से जो वादा किया था तमाम वादा पूरा करके दिखला दिया है। कैसी वफादारी करके दिखला इब्राहिम अलैहि सलाम ने। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आग में कूद जाओ, तो इब्राहिम अलैहि सलाम आग में कूद गए। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अपने बेटे को काट डालो, तो अपने बेटे को लेके जंगल में गए और कुर्बानी की तैयारी कर डाली। कैसी वफादारी। तो अल्लाह ताला घोड़े के जरिए हमको लेसन देते हैं कि इंसानों तुम भी अल्लाह के वफादार बन जाओ। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात समझो, घोड़ा जो है ताकत की निशानी है, सिंबल ऑफ जो है एनर्जी ताकत, उसका ये निशान है। इसीलिए आज भी आपने सुना होगा कोई मोटर खरीदो, कोई मशीन खरीदो, कोई इंजन खरीदो, तो लोग उस पर लिखा होता है ये इतने हॉर्स पावर का है। कभी आपने सोचा कि ये मोटर इंजन वगैरह के ऊपर ये हॉर्स पावर लिखा होता है, ये क्या चीज। हॉर्स तो अंग्रेजी में घोड़े को कहते हैं, यही हॉर्स पावर यानी घोड़े वाला पावर। तो आज के जमाने के अंदर भी मशीन इंजन वगैरह के लिए हॉर्स पावर कहा जाता है, ये ताकत की एक निशानी है। गोया अल्लाह ताला ने घोड़े को बड़ा ताकत वाला जानवर बनाया है। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, खुदा ताला की शान देखो कि इतना ताकत वाला घोड़ा, लेकिन अल्लाह ने इस घोड़े को इंसान की खिदमत के लिए लगा दिया, इंसान के ताबे बना दिया, इंसान के काबू में कर दिया। इसीलिए तो हम सवारी पर बैठते तो क्या पढ़ते हैं, सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा, अल्लाह ताला ने इस सवारी को हमारे काबू में कर दिया, हमारे कंट्रोल में कर दिया। तो ये घोड़े को भी अल्लाह ताला ने हमारे ताबे बना दिया, हमारे कंट्रोल में कर दिया, इतना ताकत वाला बड़ा मजबूत घोड़ा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके मुंह में लगाम डालता है और उसको लेकर के इधर उधर चला जाता है। तो ये अल्लाह की जो है मेहरबानी देखो, अल्लाह की नेमत देखो कि इतना मजबूत जो है घोड़ा, लेकिन वो इंसान के लिए अल्लाह ने उसको कंट्रोल में कर दिया और इंसान उससे फायदा उठाता है। अरब लोग में लड़ाई झगड़े बहुत थे, क्योंकि वहां खानदानी निजाम था, फैमिली सिस्टम की जिंदगी थी, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, फैमिली सिस्टम की जो है जिंदगी थी। लिहाजा एक फैमिली दूसरी फैमिली पर, एक खानदान दूसरे खानदान पर अटैक और हमले करते ही रहते थे, लड़ाइयाँ करते ही रहते थे। इसीलिए वो घोड़े पालते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा और चमत्कार समझो कि जो अरब लोग हर वक्त लड़ने झगड़ने वाले, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपस में उनके दरमियान कैसी मोहब्बत करा दी, कैसा जोड़ करा दिया। उसी को कुरान में फरमाया, लौ अनफक्त मा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम। ये लोग ऐसे लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन एक पूरी जमीन की दौलत लगा दो, पूरी जमीन का पैसा सोना चांदी खर्च कर दो, तो भी ये लोग एक हो सके ऐसा नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, कुरान के जरिए, ईमान और इस्लाम के जरिए उनके अंदर आपस में जोड़ और मोहब्बत करा दी। अब ये घोड़े, उनकी अलग अलग एक्टिंग, उनकी अलग अलग हालत, उनकी अलग अलग अदाओं की अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कसम खाई। यहाँ बहुत गौर करने की बात है कि जो घोड़े अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हो गए, अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो गए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल हो गए, जो घोड़ा काम में आवे, जो घोड़ा फायदे में आवे, ऐसे घोड़ों की अलग अलग अदाओं की अल्लाह ने कसम खाई। तो एक घोड़े जैसा जानवर, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हुआ। एक घोड़े जैसा जानवर, लेकिन इंसानों की जरूरत के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फायदे के लिए, माल सामान इधर उधर ले जाने के लिए, सवार को, ऊपर बैठने वाले को इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो कितना कीमती बन गया कि अल्लाह ने उसकी अलग अलग अदाओं की कसम खाई। अब ये घोड़े जब चलते हैं और फिर दौड़ते हैं तो वो हांफ जाते हैं और उसके सीने के अंदर से आवाज निकलती है। जैसे इंसान भी दौड़ता है तो हांफता है और दिल के अंदर से, सीने में से आवाज निकलती है, तो ये घोड़े भी हांफने लगते हैं दौड़ दौड़ करके। तो अल्लाह ताला ने उनकी जो हांफने की, सांस चलने की, दौड़ते वक्त सीने के अंदर से जो आवाज निकलती है, उसकी कसम खाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम के ऊपर चलने वाला कितना प्यारा है कि अंदर से जो एक आवाज निकलती है तेज दौड़ने की वजह से, सांस की हांफ की, अल्लाह ने पहली आयत में उसकी कसम खाई। नंबर दो, दूसरी आयत के अंदर ये फरमाया कि जब ये घोड़े दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि घोड़े के मालिक लोग घोड़े के पैर में जो खुर होती है उसके नीचे लोहे की, लोखंड की नाल लगवाते हैं। अपने यहाँ नालबंद फैमिली मशहूर है, ये लोग घोड़े और दूसरे जानवरों के पैर के नीचे नाल लगाने का काम करते हैं, लोखंड की नाल लगाते हैं। अब ये लोहे की नाल होती है, लोखंड की नाल होती है, और घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ते वक्त पर वो घोड़े का पैर तो जमीन पे नहीं लगेगा, वो नाल लगेगी, नाल जो पैर के नीचे है वो, और जमीन पर पत्थर है तो पत्थर के ऊपर जब घोड़े की नाल लगेगी और घोड़ा कंटिन्यू दौड़ेगा, लगातार दौड़ेगा, तो उसकी वजह से वो लोहा जो नाल में है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो उसमें से आग की चिंगारी उड़ती है। तो जब घोड़ा लगातार कंटिन्यू मुसलसल दौड़ता है और घोड़े के पैर के नीचे की नाल गर्म गर्म हो जाती है तो अंदर से चिंगारियां उड़ती है। अल्लाह ने उन चिंगारियों को कुरान में बयान फरमाया। तीसरी आयत में फरमाया फल मुगीराति सुबहा, वो सुबह सुबह के वक्त पर दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। अरब के लोग बड़े बहादुर लोग थे, वो रात के अंधेरे में छुप करके हमला करना, अटैक करना बहादुरी के खिलाफ समझते थे, धोखा देके हमला करना बहादुरी के खिलाफ समझते थे। वो तो सुबह सवेरे उजाले में, रोशनी में हमला करते थे, और इसको हिम्मत वाली बात समझी जाती है। इसलिए फरमाया कि फल मुहीरात सुबहा, जो सुबह सवेरे दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं, तो जब ये हमला करने के लिए जाते हैं तो फवसत नबी जमा, अपनी जान को जोखम में डाल करके दुश्मनों की सफों के दरमियान में, दुश्मनों के लश्कर के दरमियान में वो घुस जाते हैं। अब देखो, पुराने जमाने में कच्चे रास्ते थे, पक्के रास्ते नहीं थे। आज भी जहाँ कच्चे रास्ते वहां जाकर के देखो तो धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, गुबार उड़ती है, लेकिन ये धूल और मिट्टी और गुबार सुबह सुबह नहीं उड़ती। क्यों? इसलिए कि सुबह के अंदर मिट्टी जमी होती है, रात के अंदर शबनम पड़ती है, झांकड़ पड़ती है, उसकी वजह से मिट्टी जम जाती है, इसलिए सुबह में मिट्टी नहीं उड़ती। 8-9 बजे गर्मी के अंदर वो मिट्टी सूख जावे, फिर उसके ऊपर कोई गाड़ी जावे, जानवर जावे, इंसान दौड़े, तो गर्द गुबार और मिट्टी उड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई कि वो घोड़े इतने तेज दौड़ते हैं कि सुबह का वक्त जो मिट्टी उड़ने का वक्त नहीं है, वो ठंडक का माहौल है, लेकिन वो घोड़े ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं कि उसकी वजह से मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और मिट्टी हवा के अंदर उड़ने लगती है और पूरा माहौल समा मिट्टी मिट्टी से भर जाता है, किसी को कोई चीज दिखती नहीं है। ये 5 आयतों के अंदर घोड़ों की अलग अलग हालतों की अल्लाह ताला ने जो है कसम खाई। तो ये अल्लाह के दीन की निस्बत पर और इंसानों की जरूरियात की तकमील के ऊपर ये घोड़ों की कीमत बढ़ गई और अल्लाह ने उनकी अलग अलग हायत हालत को बयान फरमाया। आगे फरमाया ये कसम खा करके जो असल चीज समझने की है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बहुत बड़ा ना शुक्रा है। देखो एक बुजुर्ग आए थे हमारे यहाँ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के बुजुर्ग थे, उन्होंने ये आयत सुना करके कहा कि इस आयत में अल्लाह ताला बंदों की शिकायत कर रहे हैं, बंदों की फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह वालों को कहने का एक अच्छी बंदा होता है कि देखो अल्लाह अपने बंदों की शिकायत कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुकरा है। कैसे नाशुकरा? कनूद किसको कहते हैं? जो नेमत को देखता रेवे लेकिन नेमत देने वाले अल्लाह को नहीं देखता। जो नेमत को देखता रेवे लेकिन नेमत देने वाले अल्लाह को नहीं देखता। आज हमारा हाल यही है, अल्लाह ने हमको रोजी दी, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने इज्जत दी, सब दिया, हम नेमत देखते हैं। माशाल्लाह बहुत पैसे वाले हम, बहुत बड़े बंगले वाले हम, बहुत हेल्थी और तंदुरुस्त है हम, लेकिन ये माल किसने दिया, दौलत किसने दी, ये इज्जत किसने दी, ये तंदुरुस्ती किसने दी, वो अल्लाह को नहीं देखते। तो ये इंसान कनूद है, यानी बड़ा नाशुकरा है कि नेमत को तो देखता रहता है लेकिन नेमत देने वाले अल्लाह को नहीं देखता। दूसरी बात समझो, कनूत कहते हैं जो मुसीबत को देखे और नेमत को भूल जावे, जो मुसीबत को याद रखे और नेमत को भूल जावे। आज हम लोगों का सबका ये हाल है, मुसीबत तो बहुत याद रहती है लेकिन अल्लाह की नेमत को भूल जाते हैं। आज तक अल्लाह ने हमको कितना अच्छा रखा, कितना आजाद रखा, कितना मजे में रखा, अब ये देखो ये कोरोना का माहौल आया, लॉकडाउन का माहौल आया तो हम नाशुक्रे बन जाते हैं, ये गलत बात है। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उसको याद रखो, मुसीबत को भूल जाओ। लेकिन आज इंसान मुसीबत को याद रखता है और नेमत को भूल जाता है, उसी को कहा जाता है कि कनूद, कि ये इंसान बड़ा नाशुकरा है, मुसीबत को याद रखता है और अल्लाह की नेमत को भूल जाता है। भाई ये दुनिया है, कोई छोटी मोटी मुसीबत आवे तो उसको भूल जाओ और अल्लाह की नेमत को याद रखो। नंबर तीन, कनूद किसको कहते हैं? कि कनूद कहते हैं कि जो नेमत को गुनाहों में लगावे। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक ये इंसान अपने रब का नाशुकरा है, कनूद है, यानी अल्लाह ने जो नेमत दी है ने वो नाशुकरी में और गुनाह में लगाता है। अल्लाहु अकबर। आज ये इंसानों के बहुत बड़े मजमे का हाल है कि अल्लाह ने जो नेमत दी उसको गुनाह में लगा दिया। मैं आपको कुछ मिसाल दी, उसको अल्लाह ने आपको आंख दी, मुझे आंख अता फरमाई, अंधों को देख लो, बेचारे अंधे कितने परेशान रहते हैं। लेकिन आज इस आंख के जरिए से हम गुनाह करते हैं कि फिल्म देखेंगे, पराई औरतों को देखेंगे, दूसरों के सतर को देखेंगे, दूसरे के ऐप को देखेंगे, जो हराम है ये सब चीजें वो देखते हैं। हालांकि आंख के जरिए अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखते तो हज का सवाब मिलता, अपनी बीवी को मोहब्बत की नज़र से देखते तो अल्लाह की रहमत मिलती, कुरान मजीद को देखते मोहब्बत से तो नूर मिलता, काबा शरीफ को देखते मोहब्बत से तो अल्लाह की रहमत मिलती। तो ये आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, किसी अंधे को जाकर के पूछो आंख कितनी बड़ी नेमत। लेकिन इस आंख वाली नेमत को हम गुनाह में लगाते हैं, नाफरमानी के अंदर लगाते हैं। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी, ये आंख है, कान है, हाथ पैर है, बॉडी है, कितनी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन इस नेमत को हम अल्लाह की नाशुकरी में लगाते हैं, गुनाहों में लगाते हैं, नाफरमानी में लगाते हैं। हालांकि ये सब नेमत के जरिए अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करनी चाहिए। ये तीनों चीज है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान यकीनन अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। लेकिन एक बात याद रखना, तमाम इंसान नाशुक्र नहीं है, ज्यादातर इंसान नाशुक्र हैं, ज्यादा इंसान नाशुक्र हैं। अल्लाह के जो नबी है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, वो नाशुक्री नहीं करते, वो तो अल्लाह का शुक्र करके जिंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ आयत के अंदर मुराद है जनरल इंसान, ज्यादा इंसान, वो अल्लाह की नाशुक्री करने वाले हैं। बाकी अल्लाह के नबी, औलिया अल्लाह, कुतुब अब्दाल, नेक साले लोग, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले हैं, वो नाशुक्रे नहीं है। तो इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, फिर समझो कि इंसान की नाशुक्री भी अलग अलग है, नाशुक्री भी तरह तरह की है। एक नाशुक्री ये है कि अल्लाह ताला पैदा करने वाले, अल्लाह ताला रोजी देने वाले, लेकिन इंसान अल्लाह ताला को छोड़ करके दूसरे की इबादत करे, दूसरे के सामने सिज्दा करे, दूसरे की बंदगी करे, ये शिर्क और कुफ्र करना बहुत बड़ी नाशुक्री है। तो इंसान की नाशुक्री के अंदर पहली चीज क्या है कि अपने पैदा करने वाले, नेमत देने वाले, रोजी देने वाले, अल्लाह को छोड़ करके दूसरे की इबादत करे, ये बहुत बड़ी इंसान की नाशुक्री है। नंबर दो, नेमत की नाशुक्री दूसरी ये है के अल्लाह की नेमत को गुनाहों के अंदर लगा देवे। अल्लाह ने माल दिया लेकिन माल के जरिए से वो शराब पीवे, माल के जरिए से वो म्यूजिक और गाने की महफिल के अंदर जावे, माल के जरिए से वो डांस की मजलिसों के अंदर चला जावे। तो नेमत को गुनाह के अंदर लगाना, यह है नेमत की दूसरे नंबर की नाशुक्री। तीसरी नाशुक्री है कि नेमत की मोहब्बत इतनी हो और नेमत को इस्तेमाल करने में इतना मशगूल हो जाए कि वो नेमत देने वाले अल्लाह ही को भूल जावे। आज हमको अल्लाह की दी हुई नेमतों से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। अपना घर, अपना बदन, अपना माल, अपनी दौलत। हदीस में भी है कि इंसान क्या कहता है, माली माली यकूलु इब्न आदम माली माली औ कमा काल। इंसान कहता है मेरा माल तेरा माल थोड़ा ही अल्लाह ने दिया। इंसान कहता है मेरा बंगला तेरा थोड़ा ही अल्लाह ने दिया। इंसान कहता है मेरी गाड़ी अरे अल्लाह ने दी गाड़ी। तो अल्लाह ताला ने जो नेमत दी वो नेमत को इस्तेमाल करने में, वापरने में, यूज करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो नेमत देने वाले अल्लाह को भूल जाता है। नेमत की मोहब्बत इतनी आ जाती है कि वो नेमत देने वाले अल्लाह ताला को भूल जाता है। ये इंसान की बहुत बड़ी नाशुक्री है। और देखो शैतान जो है ना, इंसान से सबसे पहले नाशुक्री करवाता है। शैतान ने जन्नत से जब आखिरत से कया अरे शैतान को जन्नत और आसमानों से निकाला गया, आसमानों से जब निकाला गया तभी उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कयामत तक लोगों को नाशुक्री करने का, करवाने का। तुम्मा ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह दुनिया में जाकर इंसानों को ऐसा गुमराह करूंगा कि इंसान नाशुक्रे बन जाएंगे। देखो नाशुक्री की एक मिसाल जो मैं आपको समझने जैसी बात है, जैसे हमको कहीं सफर में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, घर से निकले तो टेंशन में कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करते करते जाते हैं, रिक्शा पकड़ा, स्टेशन पहुंचे तो अभी ट्रेन बाकी है, अभी गई नहीं है, बहुत अच्छा हुआ चलो। अब जब ट्रेन मिल गई तो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बारी के पास मिलेगी, खिड़की के पास मिलेगी, नहीं मिलेगी, एयर कंडीशन में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, सोने की मिलेगी बैठने की मिलेगी। अल्लाह का शुक्र ही नहीं कि ट्रेन मिल गई पहले, तो उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, वो नहीं, आगे आगे सब चालू है। फिर ट्रेन में बैठ गया, सीट भी मिल गई, एयर कंडीशन में भी मिल गई, बैठने सोने की भी मिल गई, तो आगे फिकर है कि ट्रेन में खाना आएगा कि नहीं आएगा, ट्रेन के अंदर आइसक्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये फिकर। फिर ट्रेन राइट टाइम जो है पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेट होगी डिले होगी। अरे इंसान, अल्लाह का शुक्र अदा कर, घर से तू निकला, फिकर थी कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन मिल गई, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ट्रेन के अंदर बैठा, सीट मिल गई, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर मौके पर खुदा का शुक्र अदा करो। ये क्या हर वक्त दिमाग हमारा लगा हुआ है कि ये होगा वो होगा वो होगा, नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करने का मिजाज बनाओ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेमत को बढ़ाएंगे। ये हर चीज के अंदर है, हर चीज के अंदर। देखो किसी के यहाँ घर के अंदर बच्चे नहीं होते तो कहते हैं दुआ करो ना कि बच्चे हो जावे। अब बच्चा हो गया तो फिर ये नहीं कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, बल्कि शुक्र अदा करने के बजाय वो क्या करते हैं कि अब ये बच्चे कब बड़े होंगे, चलो उसका टेंशन। बच्चे बड़े हो गए तो कहा इनकी बहुत अच्छी जगह, बहुत मालदार के यहाँ शादी हो जाए, चलो। फिर ये कि ये बिजनेस में वेल सेट हो जाए, धंधे में सेट हो जाए, चलो इनको बंगला मिल जावे। ले ये क्या, अल्लाह ताला से उम्मीद बांधी थी औलाद की, अल्लाह ने औलाद दी, शुक्र अदा करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र नहीं, हम लोग अल्लाह की नाशुक्री में ही लगे रहते हैं कि ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, एक हुआ तो क्या दूसरी चीज होगी कि नहीं, दूसरी होगी तो तीसरी होगी कि नहीं। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह हम सबको सही माने में शुक्र अदा कर देने वाला, शुक्र अदा करने वाला बना रहे। आगे मजलिस में मैंने शुक्राने की दुआ बतलाई थी कि सुबह में पढ़ लो, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन अव बिअहदिन मिन खल्किक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्द वलकल शुक्र, तो पूरे दिन की नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। और शाम को दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निअमतिन अव बिअहदिन मिन खल्किक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्द वलकल शुक्र, तो पूरी रात की नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। वल आदियाति ज़बहा فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل کی مجلس میں سورہ والعادیات شروع ہوئی تھی، آج اسی کو مکمل کرنا ہے. آیت کے اندر 7 نمبر کی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان خود گواہ ہے کہ میں ناشکرہ ہوں. انسان جو خود گواہ ہے تو اس کی دو صورت ہے، ایک ہے اس کی زندگی کا طرز، طرز زندگی، اس کے عمل کا طریقہ، اس کے بولنے کا طریقہ، اس کے کام کا طریقہ، اس کے سوچنے کا طریقہ، یہ خود بتلاتا ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ ہے. دوسری چیز، انسان کے اعضاء، باڈی کے اندر جتنے بھی حصے ہیں، آنکھ، کان، ناک وغیرہ کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ ہے اس کا گواہی دینا کہ یہ ناشکرہ ہے. گویا کہ انسان جو عمل کرتا ہے، انسان جو بات بولتا ہے، انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا ہے. آگے بڑی اہم آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کے اندر مال کی محبت بہت پکی ہے، अब यहाँ एक बात सोचने की है कि कुरान में अल्लाह ताला ने माल को खैर कहा है। खैर के माने तो होते हैं भलाई अच्छाई। हम किसी को पूछते हैं भाई खैरियत तो है, वो खैर यानी खैरियत तो भलाई। आयत में अल्लाह ताला ने माल को खैर कहा। जरा ध्यान से समझो, पहली बात, जो आदमी शरई तरीके से माल को कमावे और शरई तरीके से इस्तेमाल करे तो उसके लिए ये माल खैर का जरिया बनता है। शरई तरीके से कमाना और शरई तरीके से उसको खर्च करना, तो ये माल उसके लिए खैर का जरिया बनता है। दूसरी बात, इंसान की जो जरूरियात है, जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें लगी हुई है, तो उन जरूरतों का पूरा करना माल के ऊपर है। अल्लाह ताला ने माल को सबब बनाया, अल्लाह ने माल को जरिया बनाया और उसके ऊपर मदार है, डिपेंड है, आधारित है कि इंसान की जरूरियात माल के जरिए से पूरी होवे। इसीलिए कि माल होगा तो मकान होगा, माल नहीं है तो मकान नहीं है, माल होगा तो खाना होगा, माल नहीं है तो खाना भी नहीं है, माल होगा तो कपड़े होंगे, माल नहीं है तो कपड़े नहीं है, माल है तो गाड़ी है, माल नहीं है तो गाड़ी भी नहीं है, घर में इस्तेमाल की चीज़ें, वपराश की चीज़ें, माल है तो सब कुछ है, माल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ज़िंदगी का मदार ज़ाहिरी असबाब में माल के ऊपर रखा है, इसीलिए उसको खैर कहा गया। तीसरी बात यह है कि माल होती तो माल है तो खैरियत है, और माल गया तो खैरियत भी गड़बड़ा जाती है, खैरियत भी बिगड़ने लगती है। एक आदमी टेंशन में है, क्यों भाई, तो कहा माल नहीं है, जेब में हाथ डाला तो अंदर से दोरे निकले, कपड़े के दोरे निकले, एक भी पैसा नहीं निकला, खैरियत खत्म हो गई। तो माल है तो खैरियत है, माल नहीं है तो खैरियत भी गड़बड़ा जाती है। अब और बात समझो, माल को हासिल करना ये भी एक बड़ा टेंशन का फिकर का काम है। आप दुनिया के अंदर देख रहे हो कितने इंसान रात दिन माल माल माल, दौलत दौलत उसी में लगे हुए, न खाने का चैन, न सोने का चैन, न कोई जो है मजे की सुकून की जिंदगी, हर वक्त टेंशन फिकर माल में। खाते खाते भी फोन आया, सौदा हो रहा है, सो गए नींद में भी फोन आया, उठ के फोन रिसीव कर रहे हैं, ऑर्डर बुक कर रहे हैं, ऑर्डर पूरा कर रहे हैं, अरे कोई जिंदगी है। माल हासिल करने के लिए भी टेंशन, और फिर माल जब आ जाता है तो उसको हिफाजत करने में भी टेंशन। बल्कि मैं यूं कहता हूं कि माल कमाने में जितना टेंशन नहीं होता है, माल को संभालने में, उसकी हिफाजत में ज्यादा टेंशन होता है। आज लोग माल कमा लेते हैं, उसके बाद टेंशन के भाई इनकम टैक्स वाले पूछेंगे तो फिर क्या करने का, चौपड़े बनाओ, पेड़ियां खड़ी करो, स्टेक जो है बिजनेस खड़े करो, ये फिकर, चोर आके चोरी न कर जावे, डाकू आके लूट न ले जावे, घर के अंदर के चोर चोरी न कर लेवे, तो बड़ी टेंशन की बात होती है माल को संभालना। फिर पैसे होते हैं तो आदमी हर वक्त फिकर में रहता है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करे, इसको कहाँ धंधे में लगावे। तो माल कमाने में भी टेंशन, माल की हिफाजत के अंदर भी टेंशन। अब मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक माल, हलाल माल, जो जायज तरीके से कमावे वो नेक आदमी के लिए अच्छी चीज है। देखो कितनी प्यारी बात आका ने फरमाई, पाक माल हलाल माल जो जायज तरीके से कमावे वो नेक आदमी के लिए अच्छी चीज है। इससे क्या मालूम हुआ कि माल का कमाना, माल को जमा करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन माल हलाल हो जाए इस तरीके से कमावे और वो आदमी नेक होगा तो जाए इस काम में लगाएगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो, अंसार में भी मदीना में बड़े बड़े मालदार सहाबा थे जिन्होंने हलाल तरीके से मेहनत से कमाया और बड़े बड़े काम में लगाया। मदीना में कुएं खरीद के वक्फ किए, वो जमाने में कुआं खरीदना यानी बहुत बड़ी बात थी, 20-20 हजार सोने चांदी के सिक्के देने पड़ते थे तब जाके एक आध कुआं आता था। आज की तरह नहीं कि 15 हजार में हैंडपम्प बन जावे ने 50 हजार में बोरिंग हो जावे, नहीं, बड़ी बड़ी 20 हजार चांदी और सोने के सिक्के, अंदाजा लगाओ कितना महंगा कुआ होगा। तो जिनके पास पैसे थे ऐसे साहबा ने ऐसे कुएं खरीदे और लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जरूरत पड़ती थी जंग के लिए, गरीबों के लिए, और आप ऐलान करते थे तो मालदार साहबा ला करके बड़ी बड़ी रकम पेश करते थे, बड़े बड़े जो है हुजूर के सामने खैरात पेश करते थे, गरीब साहबा भी पेश करते थे। इसीलिए समझो कि माल कोई बुरी चीज नहीं, बस हलाल तरीके से कमाओ, जायज काम में लगाओ। और एक बात खास याद रखना, माल की मोहब्बत दिल के अंदर आने न पावे, माल की मोहब्बत दिल में ना आवे, इतना ख्याल रखना। मैं एक बात कहा करता हूं, अल्लाह की तौफीक से जो लोग कफनी में, कुर्ते में, शर्ट में ऊपर पॉकेट बनवाते हैं, जेब और गजुआ बनवाते हैं, वो दाबी तरफ जेब और गजुआ बनवाते हैं, बाई तरफ बनवाते हैं लेफ्ट साइड में। और अजीब बात, इंसान का दिल भी लेफ्ट साइड में होता है आमतौर पर, बाईं तरफ होता है आमतौर पर। तो जहां इंसान का दिल है वहीं ऊपर कुर्ते के अंदर आदमी जेब पॉकेट गजुआ बनवाता है। तो सुनो, जब तक माल पैसे जेब में होवे खैरियत है, और जब जेब से आगे चल कर के दिल में उतर जावे तो खैरियत खत्म हो जाती है। इसीलिए माल को जेब तक रखना, दिल तक जाने मत देना, इसका खास ख्याल रखना। और दूसरी एक बात ये भी है कि भाई ये माल दौलत हमारी खिदमत के लिए है, ऐसा नहीं कि हम माल दौलत की खिदमत के लिए हैं। आज हो क्या रहा है कि असल चीज क्या थी कि माल दौलत हमारी राहत के लिए है, हमारी सेवा चाकरी के लिए है, हमारी खिदमत के लिए है कि माल कमा के हम अच्छा खावे, अच्छा पहने, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करे, अच्छे अच्छे कामों में लगावे, रिलीफ में लगावे। लेकिन अब उल्टा हो गया कि इंसान माल का खादिम बन गया, कमाने के चक्कर, संभालने के चक्कर, इन्वेस्टमेंट करने के, लगाने के चक्कर, रोकाण करने के चक्कर। तो ये माल तो जो हमारी खिदमत के लिए था, हम उसके खादिम और नौकर बन गए, ये गलत तरीका हो गया, ये सही तरीका नहीं हुआ। आगे समझो, 5-4 बातें याद रखो जो कुरान की आयत से हैं। नंबर एक, माल को आखिरत की बैंक में जमा करा दो। एक बैंक अल्लाह के यहाँ भी है, उसमें जमा करा दो। और उस बैंक में जमा कराने का तरीका क्या है, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, सदका करो, खैरात कर दो, तो अल्लाह की बैंक में जमा हो गया। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा मालदार था, उसका किस्सा, उसकी ट्रू स्टोरी अल्लाह ने खुद कुरान में बयान फरमाई, उसमें माल की नसीहत भी है। क्या फरमाया? इज़ क़ाल लहू क़ौमुहू ला तफ़रह इन अल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। ये कारून जो बहुत बड़ा मालदार था, उसको लोग कहने लगे, भाई अल्लाह ने माल दिया है ने तो घमंड मत कर, इतरा मत, अल्लाह को भूल के खुश मत हो। बस ये पहली नसीहत याद रखना कि अल्लाह ताला माल देवे ने तो घमंड में नहीं आ जाने का, इतराने का नहीं। और दूसरी नसीहत, अल्लाह की बैंक में जमा करा दो। आगे वाली आयत में फरमाया, वबतगी फीमा आताकल्लाहुद्दारल आखिरा। अल्लाह ने जो माल दिया है ना तो उससे आखिरत कमा ले, जन्नत कमा ले। अभी बहुत अच्छा चांस है माल के जरिए आखिरत कमाने का, जन्नत कमाने का, गोल्डन चांस चल रहा है। अड़ोस में, पड़ोस में, महल्ले में, गांव में, रिश्तेदारों में, कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, बेचारे के पास खाना नहीं, खाना दो, दवा नहीं है, दवा दो, लोगों को खर्च करो, ये जन्नत कमाने का टाइम है इस वक्त तक के ऊपर। एक हदीस में आता है कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, अल्लाह फरमाते हैं तेरा कितना? जितना तूने खाया पिया वो तेरा, जितना तूने पहन के पुराना कर दिया वो तेरा, और जितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह की बैंक में जमा कराया वो तेरा। बस ये तीन हमारे हैं, याद रखना, खाया पिया पहना ओढ़ा और अल्लाह के नाम पे खर्च करके बैंक में जमा कराया, बाकी सब दूसरों का है। इधर मरे के सब लोग जो है माल का आपस में हिस्से करने, बांटने, लड़ने चालू कर देंगे। तीसरी चीज, दूसरों के ऊपर माल दे करके दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। आगे फरमाया, वअहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। अल्लाह ने एहसान किया कि तुमको मालदार बनाया, तो तुम दूसरों पर एहसान करो और दूसरों को माल दो। अब दो जगह माल खर्च करना है, एक मस्जिदों में, मदरसों में, यतीम खानों में, हॉस्पिटलों के अंदर पानी की परब बनाने में, पानी की सबील बनाने में, कुएं खुदवाने में, गरीब का घर बनाने में, और अनाज देने में, जकात सदका खैरात में, कुर्बानी में, सदकतुल फितर में, ये सब जगह खर्च करो। और चौथी बात याद रखना, माल के ऊपर गुनाह मत करो, माल के ऊपर गुनाह मत करो। जो आगे फरमाया, वा अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्ض। अल्लाह ताला ने माल दिया तो जमीन पे फसाद मत मचाओ। जमीन पर सबसे बड़ा फसाद है माल के जरिए से कुफ्र करना, शिर्क करना, गुनाहों के काम के अंदर माल को लगा देना। इसीलिए बहुत अच्छी तरह बात समझ लो, हमारा इस्लाम मजहब माल कमाने से मना नहीं करता। हलाल रोजी कमाओ, बिजनेस में जाओ, कारोबार में जाओ, खेती बाड़ी में जाओ, नौकरी करो, लारी चलाओ, दुकान खोलो, कुछ भी हलाल धंधा करो। भिखारी मत बनो, सवाली मत बनो, हाथ फैलाने वाले मत बनो। हाँ, नवरे मत बैठे रहो, दूसरों के ऊपर मत बैठे रहो, कमाओ। लेकिन माल के अंदर जो है ये चार बातें जो बतलाई उसका ख्याल रखो, ये हमेशा जो है याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला माल के गमन से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं आपको कुछ दुआ बतलाता हूँ, इन दुआओं की बरकत से माल की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। ये दुआएं मांगने का एहतमाम करो। पहली दुआ, ये सब हदीस की दुआ बतला रहा हूँ, अल्लाहुम्मा कन्नेनी बिमा रज़क्तनी वबारिक ली फी। अल्लाहुम्मा कन्नेनी बिमा रज़क्तनी वबारिक ली फी। ए अल्लाह, जो रोजी आपने मुझे दी उसमें मुझे कनाअत अता फरमाओ। कनाट क्या चीज है? जो मिल जावे ने उस पर खुश, जो मिला उस पर खुश, उसका नाम कनाट है। एक है आदमी के दिल में लालच, दोपहर में अल्लाह ने अंडा रोटी खिलाई तो लालच के शाम को तो मुर्गी रोटी खाने की है। ये लालच कनाट किया, अल्लाह ताला जो है रोटी और सिरका खिलावे तो भी अल्लाह का शुक्र। एक बुजुर्ग थे, उनके बारे में था कि वो हमेशा जो खुश रहते थे। किसी ने पूछा कि हजरत आप कभी ये नहीं कहते कि ये खाना लाओ वो खाना लाओ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं? कहा मेरे पास एक चटनी है, जैसे कि खाना अच्छा नहीं लगता तो हम चटनी मिलाते हैं ना, फिर चटनी के साथ रोटी खा लेते हैं, चावल के साथ चटनी खा लेते हैं, सालन में चटनी मिला देते हैं। तो कहा मेरे पास एक चटनी है, वो चटनी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मुझे कोई फरियाद नहीं रहती खाने में। पूछा वो कौन सी चटनी? तो कहा कनाअत नाम की चटनी, यही है कनाअत, यानी अल्लाह जो देवे उसके ऊपर खुश। तो ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा कन्नेनी बीमा रज़क्तनी वबारिकली फी, अल्लाह जो आपने मुझको रोजी दी उसमें कनाअत दो कि जो मिला उस पर खुश रहूं, और जो आप मुझे देवे उसमें मुझे बरकत अता फरमाओ। देखो लोगों ने बरकत का मीनिंग ही नहीं समझा। बरकत का मीनिंग ये है कि जितना मिले ने इतने सब काम पूरा हो जावे, इसको बरकत कहते हैं। जितना मिला उसमें जरूरत पूरी हो जावे, इसका नाम बरकत। अब मस्जिद के इमाम साहब को 10,000 रुपये पगार मिलता है तो 10,000 में इमाम साहब का पूरा घर अच्छी तरह चलता है। इमाम साहब अब्बा के लिए 1,000 रुपये भेजते भी है बचत करके, तो ये है बरकत। और एक है कालू सेठ, उनको 50,000 रुपये महीने का तो खाली घर का किराया आता है, जो भाड़े के घर है उसका, लेकिन उनका खर्चा ही 50,000 में पूरा नहीं होता है, पैसे घटते हैं, कम पड़ते हैं। तो ये बरकत थोड़ी कहला है। बरकत किसको कहते हैं? जितना मिले इतने में अपना सारा काम बन जावे। 1,000 मिले तो 1,000 में काम हो गया, 10,000 मिले तो 10,000 में काम हो गया, काम हो जावे, इसको बरकत कहते हैं। और ज्यादा मिले और काम न होवे उसको बरकत नहीं कहते। तो ये बहुत प्यारी दुआ है, इसको मांगा करो, अल्लाहुम्मा कन्नेनी बिमा रज़क्तनी व बारिक ली फी। दूसरी एक दुआ, ये सब हदीस की दुआ, अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना। ए अल्लाह, मेरी फिकर, मेरी कोशिश, मेरी सोच, मेरा विचार, ये सबसे बड़ी दुनिया दुनिया मत बना देना। आदमी सोचता विचारता है तो सबसे बड़ी सोच इंसान की रोजी पर लगे, दुनिया पर लगे, पैसों पर लगे, तो ये बहुत बुरी चीज है। तो ये दुआ मांगी गई, अल्लाह ये दुनिया और दुनिया कमाने को मेरी सबसे बड़ी फिकर मत बनाना। सबसे बड़ी फिकर तो आखिरत होनी चाहिए, सबसे बड़ी फिकर कब्र होनी चाहिए, सबसे बड़ी फिकर दीन पर अमल होना चाहिए। लेकिन आज लोगों की सबसे बड़ी फिकर दुनिया है। और तो दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना। अल्लाह ताला ने जो इल्म, जानकारी, नॉलेज, एजुकेशन दिया है तो उसका एंड और उसका सब कुछ दुनिया 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 न होवे। दूसरी दुआ ये। तीसरी एक दुआ बतलाऊं, ये भी हदीस की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन नुनफिकहु फी हक्की व अऊज़ु बिका मिन शर्री। ए अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ आपसे, तौफीक मांगता हूँ के माल को मैं उसके हक में खर्च करने वाला बनूं। हाँ भाई, माल मांगते हो ने तो माल को हक में खर्च की दुआ भी मांगो। माल हो तो उस्मान गनी जैसा दिल होवे, माल होवे तो कारून जैसा दिल न होवे। तो ये दुआ हदीस में बतलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन नुनफिकहु फी हक्की व अऊज़ु बिका मिन शर्री। ऐ अल्लाह, मैं माल की बुराई से हिफाजत चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ आपसे कि माल को उसके हक में खर्च करूँ, और मैं आपसे हिफाजत चाहता हूँ माल की बुराई की। ये तीन दुआएं मांगा करो तो इंशाल्लाह माल की गंदी और नापाक मोहब्बत से अल्लाह ताला हमारे दिलों को इंशाल्लाह पाक रखेंगे। आगे वाली आयत के अंदर फरमाया अफला यालम इदा बुअतिर मा फिल कुबूर, क्या भला इस इंसान को वो टाइम मालूम नहीं है जो मर्दे मुर्दे कब्रों में है उनको जिंदा करके अल्लाह कयामत के दिन उठाएंगे। भाइयों याद रखो, एक दिन आएगा तमाम इंसानों को अल्लाह कब्र से उठा के कयामत के मैदान में जमा कर देंगे। देखो दो बड़ी कयामत है, याद रखना। एक कयामत तो पहली दुनिया में आएगी जिसमें हजरत इसराफील अलैहि सलाम सूर फूकेंगे, दुनिया खत्म। फिर 40 बरस तक कोई नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह, फरिश्ते भी खत्म, इंसान भी खत्म, जिन्नात भी खत्म, जानवर भी खत्म, सब खत्म, अकेले अल्लाह। फिर 40 साल के बाद अल्लाह ताला इसराफील को पैदा करेंगे, फिर वो दूसरा सूर फूकेंगे और बड़ी कयामत होगी। तो जब इसराफील अलैहि सलातु वसलाम सूर फूकेंगे तो तमाम जानवर इंसान जिन्नात कब्र से खड़े हो जाएंगे, और जब कब्र से निकलेंगे तो हदीस में आता है कि बदन पर कपड़ा नहीं होगा, नंगे होंगे, इसलिए कि कफन का कपड़ा तो कब्र की मिट्टी खा गई, पैर में चप्पल नहीं होगी, बल्कि खतना के वक्त जो चमड़ी काटी जाती है वो भी बदन पर वापिस आ जाएगी। इस तरीके से अल्लाह निकालेंगे और कयामत के मैदान में जमा करेंगे। तो उस कयामत के मैदान को, कयामत के दिन को याद करो। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, और इंसान के सीनों के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है अल्लाह सब खोल देंगे, सब कुछ जाहिर कर देंगे। आज तो लोग अपने दिलों में, अपने सीनों में पता नहीं क्या क्या छुपा छुपा करके रखते हैं। हाँ, अजीब डबल जमाना चल रहा है, मुंह से बोलते कुछ है और दिल में कुछ होता है, जाहिर में कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। तो ये है वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, के सीनों के अंदर जो कुछ है वो सब जाहिर हो जाएगा। आज तो हम लोगों को कहते हैं कि भाई अल्लाह के लिए काम करो, इखलास से करो, तो हर एक कहता है अल्लाह के लिए करते हैं। अब वो दिल में क्या है वो तो अल्लाह जाने, कयामत के दिन ही पता चलेगा। इसलिए याद रखो कि दिल की नीयत अल्लाह ही जानते हैं, इसीलिए किसी की नीयत पर अटैक नहीं करने का कि इसकी नीयत तो बहुत गंदी, इसकी नीयत तो बहुत खराब। हम दिल को देख नहीं सकते, आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं आई कि दिल के अंदर क्या है और क्या इरादे हैं वो बतला दे, वो अल्लाह ही जानते हैं, और वो कयामत के दिन पता चलेगा। और देखो आज ये दिल का हाल इतना गंदा हो गया कि एक दोस्त आपको कहता है कि मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, लेकिन दिल में दुश्मनी और कीना भरा हुआ होता है। एक औरत अपने शोहर को कहती है मुझे तुझसे पक्की मोहब्बत है, लेकिन दिल के अंदर कीना और मैल भरा हुआ होता है। दो पार्टनर एक दूसरे को कहते हैं कि अपने दोनों बहुत पक्के वफादार पार्टनर, लेकिन दिल के अंदर कीना और बैर भरा हुआ होता है। आज लोग ऊपर से क्या और अंदर से क्या, ऐसे डबल मत बनो। जैसा मुंह से बोलो ऐसा दिल में रखो, जैसा जाहिर में ऐसा अंदर रखो, यही ईमान है। वरना डबल डबल रहोगे ना तो ये भी मुनाफिक होने की एक किस्म है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक भाई ने अपनी अजीब कारगुजारी सुनाई कि तकरीबन 2-3 साल होने आए, मैं मेरी बीवी ताल्लुक कुछ भी नहीं है, एक घर में साथ रहते हैं, एक बेडरूम में सोते भी हैं, एक पलंग पर सोते हैं, लेकिन 2 साल से दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। बीवी अपनी नौकरी से आकर के खाना पका के जब बेडरूम में आएगी तो वो अपना व्हाट्सएप लेकर बैठ जाएगी, मैं भी खा पी कर अपने रूम में आऊँगा, उसी पलंग के ऊपर अपना व्हाट्सएप लेकर के बैठ जाऊँगा। तो शोहर अपने व्हाट्सएप की दुनिया में, बीवी अपने व्हाट्सएप की दुनिया में, जो जब थक जाता है तब सो जाता है। इस हाल में 2-2.5 साल गुजर गए। देखो ये क्या है, जाहिर में मियां बीवी बन के साथ रह रहे हैं लेकिन दिल में दूसरों की मोहब्बत छुपी हुई है। ये तरीका बिल्कुल मुनाफिक वाला तरीका है, इसलिए फरमाया वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, सीनों में क्या है दिल में क्या है अल्लाह जानते हैं। अंदर और बाहर सब बराबर रहो, इसी के अंदर खैर और इसी के अंदर भलाई है। इसीलिए मैं आपको ऐसे डबल दुश्मनी वाले दोस्त से बचने की एक दुआ बतला। आज बहुत से दोस्त पार्टनर ताल्लुक वाले बाहर कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं, ऐसे फिर तीन दोस्तों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, वो दुआ मांगा करो तो ऐसे गद्दार और दिल में मैल रखने वाले दोस्तों से इंशाल्लाह हिफाजत होगी। हुजूर की बतलाई हुई दुआ है, اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أزاعها وإن رأى سيئة أفشاها। اے اللہ میں ایسے دوست سے آپ کی حفاظت مانتا ہوں جو میرے خلاف پلاننگ کرنے والا ہو۔ آج کتنے دوست ہیں جو دوست کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، आंख में मोहब्बत दिल में नफरत, और मेरे अंदर कोई अच्छी बात होगी तो वो तो दफन करेगा किसी को नहीं बोलेगा, और मेरे अंदर कोई बुरी बात होगी तो दूसरों को जा जा के कहेगा। कहीं महफिल में मेरी तारीफ हो रही है तो वहां वो यूं कहेगा कि इसकी बहुत तारीफ मत कर, मैं उसके साथ क्लोज हूँ, मेरी उसके साथ दोस्ती है, मैं जानता हूँ वो कैसा है कितने पानी में, ये कहकर के बुराई चालू कर देगा। तो ऐसे डेंजर दोस्तों से बचने के लिए ये दुआ मांगा करो, बहुत पावरफुल दुआ है। तो जैसे जाहिर में ऐसे दिल में रहो, जैसे ऊपर ऐसे अंदर रहो, दोनों बराबर रखो। ये मुनाफिक है कि ऊपर ऊपर तो मीठी मीठी बात करे और अंदर बैर और कीना भरा हुआ हो, अंदर अंदर जो है गंदगी है और ऊपर दोस्ती बतलाता हो, ये गलत चीज है। ये सब भांडे कयामत के दिन फूटने वाले हैं, सब राज कयामत के दिन खुलने वाले हैं। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इदिल लखबीर, यकीनन अल्लाह ताला उस कयामत के दिन उनकी हालत से पूरी खबर रखते होंगे। देखो हर वक्त अल्लाह ताला को इंसानों की हर बात की पूरे पूरी खबर है, लेकिन कयामत के दिन जो अल्लाह ताला की तमाम अल्लाह के पास तमाम बातें हैं वो सब की सब जाहिर भी कर दी जाएगी, डिक्लेयर भी कर दी जाएगी, लोगों के सामने जाहिर भी कर दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जाहिर और बातिन में, ऊपर और अंदर में बराबर बना देवे, अच्छा बना देवे, आखिरत की फिक्र देवे, नाशुकरी से अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे।